एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो पुणे के स्टूडियो से
आपका हार्दिक स्वागत है।
यह हमारी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सेवा है।
हमारे आज के कार्यक्रम में हम आपके लिए एक प्रेरणादायक संदेश और प्रशंसा के गीत ले आए हैं।
आपको आध्यात्मिक रूप से मजबूत करने के लिए आप परमेश्वर का वचन सुनेंगे।
आप एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो सुन रहे हैं आशा की वाणी।
अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क कर सकते हैं 1-800-833-2231 पर संपर्क करें या bible@awr.org पर ईमेल करें।
इस डाक पते पर हमें लिखने के लिए आपका स्वागत है। एडवेंटिस्ट मीडिया सेंटर, पोस्ट बॉक्स 1446, मार्केट यार्ड पुणे 411037, महाराष्ट्र, भारत।
आप हमें इस पर ईमेल कर सकते हैं hindirsamc@sudavent.org। एक बार फिर ईमेल आईडी hindirsamc@sudavent.org पर।
आप इस नंबर पर आपकी बाइबल अध्ययन में रुचि और प्रार्थना अनुरोध के साथ हमसे संपर्क कर सकते हैं। 9195-7285-9272।
आप हमारे सभी कार्यक्रमों को सुनने के लिए हमारी वेबसाइट awr.org पर भी लॉगिन कर सकते हैं। मैं दोहराता हूँ awr.org या awr360 मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं।
एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो AWR पुणे स्टूडियो से।
हमारे साथ हैं श्रीमान रॉबिन्सन आर कुजूर परमेश्वर का वचन प्रस्तुत करने के लिए।
परमेश्वर का वचन सुनने से पहले आपके लिए एक मधुर गीत।
बनाया यीशु हमको नया, आहा के लहू कुछ पर अपना तूने बनाया यीशु हमको नया बाहा के लहू क्रूस पर अपना दुनिया से भी हंसी तूने दी है खुशी धन्य है यीशु तेरा देखो ये हवा झूमे देखो ये फिजा में देखो ये फिजा ये आसमां ये जमीन करते बढ़ाई तेरी आया है जहां में लेके तू खुशी और हरियाली आया है जहां में लेके तू खुशी और हरियाली गाए देखो ये हवा तूने दिया है यीशु जीवन ये उपहार कैसा अनोखा तेरा हमसे है प्यार तूने दिया है हमको जीवन ये उपहार कैसा अनोखा तेरा हमसे है प्यार अपनों से भी बढ़कर तूने किया है प्यार धन्य है यीशु तेरा गाए देखो ये हवाए देखो ये झूमे देखो ये फिजा झूमे देखो ये फिजा ये आसमां ये जमीन करके बढ़ाई तेरी आया है जहां में लेके तू खुशी और हरियाली आया है जहां में लेके तू खुशी और हरियाली गाए देखो ये हवाए देखो ये झूमे देखो ये फिजा झूमे देखो ये फिजा ये आसमां ये जमीन करते बढ़ाई तेरी आया है जहां में लेके तू खुशी और हरियाली आया है जहां में लेके तू खुशी और हरियाली आया है जहां में लेके तू खुशी और हरियाली
अब समय है परमेश्वर का वचन सुनने का।
नमस्कार प्रिय श्रोताओं, मैं भाई रॉबिन्सन कुजूर परमेश्वर का सेवक परमेश्वर का वचन लेकर आपके पास आता हूँ। आइए हम परमेश्वर का वचन सुनने से पहले उससे प्रार्थना करें। हे हमारे महान दयालु सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम तेरे पास आते हैं पिता परमेश्वर, हमारे मनों को हमारे हृदय को खोल दे जब हम तेरे वचनों को सुनते हैं पिता परमेश्वर। मेरे श्रोताओं के संग विशेष रूप से हो, उन्हें तेरे वचन को सुनने और समझने के लिए मदद कर और तेरे वचन के द्वारा उन्हें आशीषित कर और तेरे राह में चलने के लिए अगुवाई कर। पिता परमेश्वर मेरे संग हो, तेरा पवित्र आत्मा दे ताकि मैं तेरे वचनों को तेरे सामर्थ के द्वारा बतला सकूं। प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, सुना ग्रहण करें, आमीन। प्यारो, आज का मेरा संवाद का शीर्षक है तुम नमक हो। आई हम यीशु मसीह का वचन पढ़े जो मत्ती 5:13 में मिलता है। यहाँ यीशु मसीह कहते हैं तुम जगत के नमक हो। आई हम इसे पढ़ते हैं। कहता है तुम पृथ्वी के नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा? फिर वह किस काम का नहीं, फिर वह किसी काम का नहीं, केवल इसके कि बाहर फेंका जाए और मनुष्यों के पैरों तले रौंदा जाए। एक कलीसिया जिसे विशेष रूप से दुनिया के सामने परमेश्वर का प्रतिनिधित्व करने के लिए बुलाया गया है, उसे अपने विशेष अधिकार पर विचार करने के लिए, अपनी जिम्मेदारी को भूलने के लिए लगातार खतरे का सामना करना पड़ता है। इसलिए आइए हम इस वचन को पढ़ें और जानें कि परमेश्वर हमें अपने लोगों को बुलाया है कि हम उसके लिए जगत में नमक का काम करें जो अपना स्वाद नहीं खोया है। प्यारो, धरती का नमक कौन है? यीशु ने अपने मित्रों को पृथ्वी का नमक कहा। ध्यान देने योग्य 3 महत्वपूर्ण बातें हैं। पहला, यीशु ने इस तथ्य पर जोर दिया कि उनके अनुयायियों को दूसरों की मदद करने के लिए अपनी सत्यपूर्ण अंतर्दृष्टि का उपयोग करना चाहिए। नमक को उसके संरक्षण गुणों के लिए महत्व दिया जाता है, और जब परमेश्वर अपने बच्चों को नमक कहता है तो वह उन्हें सिखाता है कि उन्हें अपने अनुग्रह का विषय बनाने का उसका उद्देश्य यह है कि वे दूसरों को बचाने में एजेंट बन सकें। दूसरा है, यीशु ने अपने अनुयायियों से लोगों से मिलने और उनके विश्वास को साझा करने का आग्रह किया। नमक को उस पदार्थ के साथ मिलाना चाहिए जिसमें इसे मिलाया जाता है। इसे संरक्षित करने के लिए इसे अंदर तक जाना चाहिए और उसमें घुलना चाहिए। इसलिए व्यक्तिगत संपर्क और संगति के माध्यम से ही लोगों तक सुसमाचार की बचाने वाली शक्ति पहुंचती है। तीसरा है, यीशु चेतावनी दे रहे थे जो नमक अपना स्वाद खो देता है उसका कोई खास मूल्य नहीं रह जाता और उसे आमतौर पर फेंक दिया जाता है। आइए हम कुलिसियों 4:6 के संदर्भ में नमक की कल्पना करें। मसीह के प्रथम आगमन के समय नमक का उपयोग भोजन को स्वादिष्ट बनाने और उसे सुरक्षित रखने दोनों के लिए किया जाता था। मसीह के श्रोताओं को इस बात का एहसास होना चाहिए था कि समाज में परमेश्वर के राज के मूल्यों को आकर्षक बनाने और सुरक्षित रखने में उन्हें क्या भूमिका निभानी चाहिए। यीशु ने अभी अभी स्वर्ग में और साथ ही पृथ्वी पर परमेश्वर की सरकार के संचालन सिद्धांतों की व्याख्या की थी। वे सभी जो परमेश्वर के मित्र होने का दावा करते थे उन पर इन सिद्धांतों को जीने और उन्हें अपने अविश्वासी मित्रों के साथ साझा करने की जिम्मेवारी थी। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा तुम नमक हो, ना कि नमक तुम्हारे पास है। इस अंतर में हम क्या अंतर देखते हैं? मत्ती 5:13 को फिर से देखिए। बोनहोफर ने दावा किया कि मसीह ने कहा तुम नमक हो, ना कि तुम्हारे पास नमक है। गवाही किसी प्रतिनिधि द्वारा नहीं होती है या हमारे पास मौजूद कुछ देने से नहीं होती है, बल्कि यह खुद को देने से होती है। प्यारो, क्योंकि हम नमक हैं और जैसे नमक खुद को देता है वैसे ही हमें भी देना चाहिए। वास्तव में दूसरों की सेवा में खुद को समर्पित करना मसीह के महान प्रेम का मूर्त रूप है। यह मसीहों के लिए है। इस तथ्य से हम क्या सबक सीख सकते हैं कि नमक को भोजन में डालना जरूरी है, तभी नमक प्रभावी हो सकता है। जैसे नमक खाने को स्वादिष्ट बनाने के लिए उसमें मिल जाता है, वैसे ही यीशु इस पतित दुनिया में लोगों से जुड़ने के लिए आए और अपने जीवन से उनके जीवन में नमक डाला। उन्होंने उन तक पहुंचने की पहल की जहां वे थे और उन्हें अपने प्यार का स्वाद और अपने जीवन का उत्साह पहुंचाया। यह कहने की जरूरत नहीं है कि नमक खाने पर छिड़का जाता है और इसके विपरीत नहीं, नमक पहल करता है। अगर कोई नमक के ऊपर खाना छिड़कता है तो हम इसे हास्यपद मानेंगे, है ना। नमक का स्वाद खोना किस तरह परमेश्वर के उन लोगों को दर्शाता है जो उसके प्रति विश्वास घाती हैं, इसे हम लुका 14 का 34 और 35 में पढ़ पाते हैं। नमक जो अपना स्वाद खो चुका है वह एक फलहीन पेड़ की तरह है, यह आवश्यक स्थान घेरता है और यह झूठी उम्मीद दिए जगाता है जिससे बर्बादी और निराशा दोनों होती है। तो फिर हम स्वादहीन नमक बनने से कैसे बच सकते हैं? शुरू से ही जिन लोगों को परमेश्वर के विशेष प्रतिनिधि होने के लिए अलग रखा गया है उन्हें परमेश्वर को अपने विश्वास के केंद्र में रखने में समस्या रही है, और हमारे जीवन के केंद्र में उनके बिना हम अपने जीवन के केंद्र बन जाते हैं, और यह बेवफाई का पक्का रास्ता है। मसीह के जीवन के बिना हम पूरी तरह से स्वादहीन हैं। प्यारो, बहुत से धार्मिक लोग ईश्वर के बारे में गलत बयानबाजी के माध्यम से उन सत्यों को बहुत नुकसान पहुंचा सकते हैं जिन्हें वे संजोते हैं। यीशु अपने प्रेम में हमें स्वाधीन और गुनगुने बनने के खतरे से दूर रहने के लिए कहा है। वह हमको कहता है कि हम नमक हैं, इसलिए हम नमक का स्वाद ना खोएं। यह यीशु मसीह का प्रोत्साहन है। नमक का स्वाद प्रेम को दर्शाता है। यह हम मती 5 का 44 और 47 में पढ़ सकते हैं। वैन एलन वाइट नमक के स्वाद को हमारे जीवन में व्याप्त मसीह के प्रेम से पहचानती हैं, लेकिन वह इस विचार को और आगे बढ़ाती हैं। वह लिखती हैं कि ऐसा प्रेम दूसरों की ओर प्रभावित होगा उनसे प्राप्त उपकार के कारण नहीं, बल्कि इसलिए कि प्रेम ही क्रिया का सिद्धांत है। यह अगापे प्रेम है जिसमें अप्रिय को भी प्रेम करने की क्षमता है। यह सिद्धांत से निकलता है। यह बुद्धिमान, सक्रिय और कल्पनाशील है। क्या कभी कभी अप्रिय लोगों से प्रेम करना कठिन होता है? हाँ, आप बहुत बार ऐसा महसूस किए होंगे, लेकिन परमेश्वर हमें अप्रिय लोगों से भी प्रेम करने सिखाता है, और परमेश्वर कहता है कि वह कि उसमें यह संभव है। हम पहला यूहन्ना 4 का 11 और 12 में यह पढ़ सकते हैं। ईश्वर प्रेम है। वह केवल प्रेम नहीं करता या प्रेम नहीं दिखाता, बल्कि वह स्वयं प्रेम है। जब हम उसके शत्रु थे तब उसने मसीह में हमारे प्रति अपना बिना शर्त वाला प्रेम प्रकट किया। हम ऐसे अथाह प्रेम के पात्र नहीं हैं, लेकिन उसका प्रेम कोई ऐसी चीज नहीं है जिसके हम पात्र हों, बल्कि उसे स्वीकार किया जाना चाहिए। यह ऐसा प्रेम है जो केवल एक आवेग या क्षणिक भावना नहीं है, बल्कि एक स्थायी सिद्धांत है। इससे हमें कितना जबरदस्त आश्वासन मिलना चाहिए। ऐसे प्रेम का अनुभव करना ही हमें अप्रिय लोगों से प्रेम करने में मदद करने का एकमात्र तरीका है। यदि हम अनुभव करते हैं कि वह हमारे सभी अभिप्रियताओं के बावजूद हमसे प्रेम करता है, तो प्यारो, यह हमें दूसरों से बिना शर्त प्रेम करने के लिए प्रेरित करता है। जब प्रेम हृदय में भर जाता है तो यह दूसरों तक प्रभावित होगा, उनसे प्राप्त उपकार के कारण नहीं, बल्कि इसलिए कि प्रेम कार्य का सिद्धांत है। प्यारो, धन की शक्ति में भ्रष्ट और नष्ट करने की प्रवृत्ति होती है। बल की शक्ति चोट पहुंचाने के लिए मजबूत होती है, लेकिन शुद्ध प्रेम की उत्कृष्टता और मूल्य अच्छा करने की उसकी क्षमता में निहित है, और केवल अच्छा करने के अलावा कुछ भी नहीं करना है। हम पहला यूहन्ना 4 का 8 में पढ़ते हैं कि परमेश्वर प्रेम है और नमक का स्वाद प्रेम को दर्शाता है। आज के पाठ में पहले हमने यीशु के प्रयासों पर विचार किया था जिसमें उन्होंने लोगों की समझ को प्रतिकृष्ट किया कि दूसरों से प्रेम करने का क्या अर्थ है। हमारे प्रभु ने प्रेम की उधर परिभाषा के बारे में हमारी समझ को भी नवीनीकृत किया, जो कि एक व्यक्ति और ईश्वर के बीच का प्रेम है। जब तक हम अपने लिए उनके प्रेम और उनके प्रति अपने प्रेम का अनुभव नहीं करते, तब तक हम दूसरों से सच्चा प्रेम नहीं कर सकते। मसीह परमेश्वर को प्रेम के परमेश्वर, दया, कोमलता और करुणा के परमेश्वर के रूप में दुनिया के सामने प्रकट करने के लिए आया था। सच्चे ईसाई होने का मतलब है कि हम परमेश्वर और स्वर्ग के बारे में जो कुछ भी सोचते और कहते हैं उसके लिए यीशु को आदर्श बनाना। प्यारो, यीशु के प्रत्येक कार्य में, उनके निर्देश के प्रत्येक पाठ में हमें परमेश्वर को देखना, सुनना और पहचानना है। दृष्टि में, सुनने में, वास्तव में यह पिता की आवाज और गतिविधियां हैं। यीशु पापी मानवता के लिए भेजा गया स्वर्ग का नमक है, ताकि वह अपना प्रेम, धार्मिकता, जीवन और उद्धार बांट सके। जब हम मसीह के जीवन को अपने जीवन में परिवर्तन करने देते हैं, तो हम दूसरों के साथ वह साझा करते हैं जो हमने उनसे प्राप्त किया है। यीशु ने कहा, जैसे तूने मुझे जगत में भेजा है, वैसे ही मैंने भी उन्हें जगत में भेजा है। यीशु मसीह इस वचन को परमेश्वर से कह रहे थे, जो की रिकॉर्ड है यूहन्ना 17:18 में। जब वह अपने जीवन से हमारे जीवन को नमकीन बनाता है, तो उसका मिशन हमारा मिशन बन जाता है। हम इस मरती हुई दुनिया में उसके वफादार प्रतिनिधि बन जाते हैं। जंगल में या मरुभूमि में नमक की वाचा के द्वारा हारून और उसकी संतानों के साथ प्रभु द्वारा अपने गठबंधन को मुहरबंद किया। यह हम गिनती 18:19 में पाते हैं। भाइयों, यह नमक की वाचा परमेश्वर की अपने लोगों के प्रति प्रतिबद्धता, प्रेम और वफादारी को दर्शाता है। उस समय लोग नमक को दोस्ती, सम्मान और वफादारी से भी जोड़ते थे। आज भी मध्य पूर्व के रेगिस्तानों में घूमने वाले बेडुइन के समूह नमक के साथ सद्भावना की वाचा को सील कर देंगे। उसने मेरी मेज पर नमक खाया, या हमारे बीच नमक है, वे कहते हैं, जिसका अर्थ है कि उन्होंने एक साथ भोजन साझा किया और इस तरह एक दूसरे को भरोसेमंद दोस्तों के रूप में स्वीकार किया। मसीह जीवन और सेवकाई में संसार को हमारी एकता दिखनी चाहिए। प्रभु यीशु मसीह का वचन है जो यूहन्ना 17:21-23 में हम पाते हैं। जब परमेश्वर अपने बच्चों को नमक कहता है, तो वह उन्हें सिखाता है कि उन्हें अपने अनुग्रह का विषय बनाने का उसका उद्देश्य यह है कि वे दूसरों को बचाने में माध्यम बन सके। जो मसीह सत्य के द्वारा शुद्ध किए जाते हैं, उनमें ऐसे बचाने वाले गुण होंगे जो संसार को पूर्ण नैतिक भ्रष्टाचार से बचाएंगे। यीशु हमें बताते हैं कि उनका मिशन हमारा मिशन है, और जिस तरह से उनके साथ व्यवहार किया गया था, वैसा ही हमारे साथ भी किया जाएगा। दूसरे लोग आपको किस लिए पहचानते हैं? जब आप उनके संपर्क में आते हैं, तो क्या वे आपको आपकी स्थिति और उपलब्धि के लिए पहचानते हैं, या यीशु के समान होने के लिए पहचानते हैं? प्यारो, गलतियों पर लगातार ध्यान देने के बजाय सत्य पर ध्यान केंद्रित करके यीशु ने अपने श्रोताओं में से कई के दिलों में अपनी जगह बनाई। जब यीशु बोलते थे, तो यह झिझक भरी अनिश्चितता शब्दों की पुनरावृत्ति और परिचित आकृतियों के साथ नहीं होता था। सत्य उनके होठों से नए और दिलचस्प चित्रणों में लिपटा हुआ निकलता था, जो इसे एक नए रसोद्घाटन की ताजगी देता था। उनकी आवाज कभी भी अस्वाभाविक कुंजी पर नहीं टिकी थी, और उनके शब्द उनके महत्व और उनके स्वागत या अस्वीकृति में शामिल महत्वपूर्ण परिणामों के अनुरूप एक गंभीरता और आश्वासन के साथ आते थे। धरती के नमक के रूप में ईसाइयों की जिम्मेदारी है कि वे सुसमाचार की बचाने वाली सच्चाइयों को साझा करें, प्यार करें और दूसरों की सेवा करें। अगर हमारा मसीह अनुभव इन गतिविधियों से भरा नहीं है, तो हमारा नमक निश्चित रूप से अपना स्वाद खो चुका है। इसलिए प्यारो, आइए, प्रभु यीशु मसीह हमें बुलाता है, हमें नमक बनने के लिए कहता है। वह अपना चरित्र बांटना चाहता है। वह इस धरती पर आया नमक बन करके और लोगों को आशीष देने के लिए। वह चाहता है कि हम भी इस दुनिया में जाए और उसका आशीष दुनिया में फैलाए, दुनिया के लिए नमक बने। परमेश्वर हम सबों को आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। ये हमारे महान सर्वशक्तिमान दयालु परमेश्वर पिता, हम तेरे पास आते हैं, हम सबों के संग हो और आशीष दे। जब हम तेरे वचनों को सुने हैं, हमें उससे उसके पीछे चलने के लिए मदद कर। मेरे श्रोताओं के संग हो पिता, उन्हें तेरे वचन के द्वारा आशीष दे और आत्मिक उन्नति करने के लिए मदद कर। हम सबों को तेरे रास्ता में चला और तेरे राज के लिए तैयार कर। हमें नमक बना जैसा यीशु मसीह हमें चाहता है कि हम यीशु मसीह का चरित्र लोगों को बांट सके, दुनिया के लिए आशीष बन सके। तो यीशु के नाम से मांगते हैं, सुना ग्रहण कीजिए।
अपने लोगों के लिए आने वाला है मसीह, अपने लोगों के लिए देने वो जीवन अनंत स्वर्ग में। आने वाला है मसीह अपने लोगों के लिए, देने वो जीवन अनंत स्वर्ग में। संसार से मन फिराओ, यीशु को
साथ ही हम लगभग अपने प्रसारण के समाप्ति पर आ गए हैं। परमेश्वर के वचन को अधिक जानने के लिए आप हमेशा हमें 1800833231 पर संपर्क करें या हमें bible@awr.org पर ईमेल करें।
हमारा डाक पता है AWR Adventist World Radio, पोस्ट बॉक्स 1446, पुणे 411037, महाराष्ट्र, भारत।
आप हमें इस पर ईमेल भी कर सकते हैं hindirsamc@sudadvent.org।
मैं हूं गौरव चौहान
और मैं हूं सारा मंडोरा। AWR से विदा लेते हैं।
अपने परिवार और दोस्तों के साथ फिर से हमसे जुड़े,
तब तक हम आपको अलविदा और ईश्वर के आशीर्वाद की कामना करते हैं।